इस तरह से फल में बाच्यत्व रहता है धातु का, ये जो है इन्होंने सिद्ध किया पिछले पाठ में। क्योंकि अगर फल का में बाच्यत्व नहीं मानेंगे तो प्रियते घट स्वयमेव इस तरह से प्रयोग नहीं बन पाएगा, क्योंकि दृश्यते घट स्वयमेव प्रयोग नहीं होता, क्योंकि उसमें घट में दर्शन संभव नहीं है। इसी तरह से यत्न केवल अर्थ करेंगे तो घट में यत्न संभव नहीं होगा, क्योंकि घट अचेतन है। तो फिर ये कर्मबद्ध भाव न होने से क्रियते घट स्वयमेव ये प्रयोग नहीं होगा, जबकि ये प्रयोग होना चाहिए। जब इस तरह से व्याकरणों ने उनको मजबूर कर दिया मानने के लिए कि धातु का अर्थ जो है फल भी मानना चाहिए और व्यापार भी मानना चाहिए, तो फिर नैयायिक जो है ना उस पर प्रश्न खड़ा करते हैं, सवाल खड़ा करते हैं, कहते हैं कि ननु एवं क्रियादेह इव, ताकि जैसे क्रिय आदि धातु में आप उत्पादन अर्थ मानते हैं, माने फल और व्यापार दोनों अर्थ मानते हैं, तो जानात इत्यादि अपि, फिर को ज्ञा धातु आदि जो धातु है उसमें भी आपको दोनों अर्थ मानने चाहिए। ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि नैयायिक लोग जो है ना क्रिय धातु और ज्ञा धातु दोनों का केवल व्यापार अर्थ मानते हैं, फल अर्थ नहीं मानते। इसलिए वो अपनी दृष्टि से प्रश्न कर रहे हैं कि आप मुझे मजबूर कर रहे हो कि क्रिय धातु का दोनों अर्थ मानो, फल और व्यापार, तो जैसे क्रिय धातु में दोनों माना जाएगा उसी तरह से ज्ञा धातु में भी दोनों अर्थ माना जाएगा। और फिर दोनों अर्थ मानने पर क्या होगा कि विषयावच्छिन्न आवरण भंगादि फल बाचित्वम आवश्यकम, माने ज्ञा आदि धातु में भी जो है फल बाचित्व आवश्यक होगा, माने फल बाचकत्व मानना होगा, फल अर्थ मानना होगा। तो ज्ञा धातु में ज्ञा अर्थ धातु का अर्थ होता है ज्ञान, तो ज्ञान जो है उसमें फल क्या होगा, तो वो फल बताया विषयावच्छिन्न आवरण भंग। विषय कहते हैं माने जिसका ज्ञान हो वह हो गया विषय, उस विषय से अवच्छिन्न माने उस विषय से अलग किया हुआ जो आवरण भंग है, आवरण कहते हैं पर्दा को और भंग कहते हैं नाश को। तो विषय जैसे मान लीजिए घटम जान आती है माने घड़ा को जानता है, यहाँ पर विषय क्या हुआ घट, तो और विषयावच्छिन्न आवरण क्या हुआ माने घट का अज्ञान जो है वही वहाँ पर घट विषयावच्छिन्न आवरण है। तो घट का जब ज्ञान होता है तो क्या होता है, घट का अज्ञान नष्ट हो जाता है, अज्ञान भंग हो जाता है, तो अज्ञान रूपी जो आवरण है उसका भंग होना यही जो है ज्ञा धातु का फल होता है। ठीक है, तो वह अज्ञान रूपी आवरण का जो भंग होगा किसके, तो जो ज्ञान का विषय होगा उसके। तो घटम जानाति में घट विषय है और अज्ञान कैसा है, तो घट विषयावच्छिन्न आवरण जो है वह अज्ञान है और उसका भंग होना माने उसका नाश होना। तो इसी तरह से विषयावच्छिन्न आवरण भंग रूप फल जो है वह ज्ञा धातु का मानना पड़ेगा, क्योंकि आप क्रिय धातु में हमको मानने के लिए विवश कर दिया आपने कि फल अर्थ मानना ही पड़ेगा, तो फिर ज्ञा धातु में भी ये अर्थ मानना पड़ेगा। और अन्यथा अगर ये अर्थ नहीं मानेंगे तो सकर्मकता अनापत्ते, तो फिर सकर्मकता नहीं आ पाएगी, माने ज्ञा धातु सकर्मक नहीं कहलाएगी, क्योंकि सकर्मक कहलाने के लिए आपने कहा है कि फल और व्यापार दोनों मानना चाहिए, तो ज्ञा धातु में भी आपको दोनों मानना पड़ेगा। इस तरह से उन्होंने आपत्ति देते हुए कहा नैयायिकों ने, और फिर उस पर कहा कि अगर वह सकर्मक हो जाएगी ज्ञा धातु तो क्या होगा, तथा च ज्ञायते घट स्वयमेव इति किन्न स्यात्, ताकि फिर इस तरह से प्रयोग होने लगेगा कि ज्ञायते घट स्वयमेव, अर्थात इसमें भी कर्मबद्ध भाव हो जाएगा ज्ञा धातु में, और कर्मबद्ध भाव से कर्मकर्ति रूप बनेगा, जैसे ओदन पच्यते स्वयमेव उसी तरह से ज्ञायते घट स्वयमेव ऐसी आपत्ति होने लगेगी। इसका मतलब हुआ कि घड़ा स्वयं जानता है, अब तो घड़ा स्वयं को कैसे जानेगा, वह तो निर्जीव है, लेकिन इस तरह से प्रयोग होने लगेगा, क्योंकि ये सकर्मक हो गई ज्ञा धातु फल व्यापार अर्थ होने से, और सकर्मक धातु में ही जो है कर्मबद्ध भाव होने से ज्ञा का ज्ञायते रूप बनता है, तो यह इस तरह से आपत्ति होने लगेगी, ऐसा नैयायिकों ने कहा। एवं ग्रामो गम्यते स्वयमेव इत्यादि, ताकि ऐसे ही जो है फल व्यापार जब हर जगह अर्थ मानेंगे तो ग्रामो गम्यते स्वयमेव, स्वयं ही गांव जा रहा है, इस तरह से प्रयोग होने लगेगा। जबकि गांव तो कहीं आता जाता नहीं है, वह तो स्थिर रहता है, इस तरह से प्रयोग होने लगेगा फल व्यापार दोनों अर्थ मानने पर। इति आशंकाम मनस कृत्वा, ऐसी आशंका को मन में करके व्याकरण लोग जवाब देते हैं, क्या निर्वर्तिये च विकार्ये च कर्मबद्ध भाव इष्यते न तु प्राप्ये कर्मनीति सिद्धांतोत्र व्यवस्थिता। ताकि ऐसा है, आपने कर्मबद्ध भाव के विषय में प्रश्न खड़ा किया है कि जायते घटः स्वयमेव होने लगेगा, ग्रामो गम्यते स्वयमेव ऐसा प्रयोग होने लगेगा, क्योंकि सकर्मक होने के कारण इसमें भी कर्मबद्ध भाव होगा, यही कहा ना आपने। लेकिन ये समस्या वस्तुतः है नहीं, क्योंकि कर्मबद्ध भाव जो होता है वह केवल निर्वर्त्य कर्म में होता है और विकार्य कर्म में होता है, प्राप्य कर्म में जो है कर्मबद्ध भाव नहीं होता। यहाँ जो है ज्ञायते ज्ञा धातु जो कर्म है घट, और ग्रामो गम्यते में ग्राम जो है गम धातु का कर्म, ये दोनों जो है ये निर्वर्त्य कर्म है और विकार्य कर्म है, इसलिए इसमें कर्मबद्ध भाव नहीं होगा, और कर्मबद्ध भाव नहीं होने से इस तरह के बाकी के प्रयोग की आपत्ति नहीं होगी। ये कर्मबद्ध भाव कहाँ होता है, तो प्राप्य कर्म में ही होता है। इति सिद्धांतो व्यवस्था, ऐसा ही सिद्धांत जो है व्यवस्थित है। आगे बताते हैं इप्सितम कर्म त्रिविधम, कि ये जो कर्म दो प्रकार का पहले होता है, इप्सित कर्म और अनिप्सित कर्म। तो यहाँ इप्सित कर्म की बात हो रही है कि इप्सितम कर्म त्रिविधम, इप्सित कर्म जो है तीन प्रकार का होता है, निर्वर्त्यम विकार्यम प्राप्यं च, निर्वर्त्य कर्म विकार्य कर्म और प्राप्य कर्म। तत्र आद्ययोः कर्मबद्ध भावः न अन्त्ये, आदि जो दो हैं निर्वर्त्य और विकार्य, उसी में कर्मबद्ध भाव होता है, न अन्त्ये अंत में माने प्राप्य कर्म में कर्मबद्ध भाव नहीं होता है। अब आपके मन में उठ रही होगी बात कि ये प्राप्य कर्म क्या होता है, निर्वर्त्य कर्म क्या होता है, विकार्य कर्म क्या होता है, तो पहले मैं समझा देता हूँ, फिर पुस्तक में देखेंगे। जो जिस माने जो चीज़ नई बनती है उसको निर्वर्त्य कर्म कहते हैं, जैसे घटम करोति, पहले वो मिट्टी रहती है और बाद में वो घड़ा बन जाता है, तो जब एक दूसरा जो है ना जिसको बनाया जाता है जिस कर्म को, उसको हम निर्वर्त्य कर्म कहते हैं, क्लियर। फिर दूसरा है विकार्य कर्म, जिसका स्वरूप बाद में बदल जाए उसको हम विकार्य कर्म कहते हैं, जैसे दूध से दही बन जाता है तो वह दही जो है दूध का विकार कहलाता है, ठीक है। तो निर्वर्त्य कर्म वो हुआ जिसको बनाया जाए, विकार्य कर्म ये हुआ जो जिसमें रूप परिवर्तित हो जाए, और प्राप्य कर्म क्या होता है कि प्राप्य कर्म वो होता है जिसमें कितनी भी क्रिया की जाए उससे उस प्राप्य कर्म पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि देखिए घटम पश्यति, घड़ा को एक बार देखिए, हजार बार देखिए, घड़ा के स्वरूप में कोई फर्क पड़ेगा, या एक आदमी उसको देखे या हजार आदमी देखे उस पर कोई फर्क पड़ेगा। तो क्रिया करने से जिस कर्म में कोई फर्क न पड़ता हो वह कर्म जो है प्राप्य कर्म कहलाता है, लेकिन ये बात निर्वर्त्य कर्म और विकार्य कर्म में नहीं है। अब आगे पंक्ति में पुस्तक में देखिए प्राप्यत्वंच, माने प्राप्य कर्म क्या होता है, तो क्रियाकृत विशेष अनुपलभ्यमानत्वम, क्रिया के द्वारा क्रिया करने पर कुछ विशेष जहाँ अनुपलब्ध हो, कुछ विशेष उसमें अंतर न पड़े, वह प्राप्य कर्म होता है। इति सुवर्त निर्णय बक्षते, ये जो है सुवर्त प्रकरण जो आगे आने वाला है उसमें बक्षते माने बताया जाएगा। आगे उदाहरण देते हैं, नहीं अयम घटः केनचित् दृष्टः, घड़ा को देख करके चूंकि उसमें देखने से कुछ विशेष पैदा नहीं होता है, इसलिए नहीं अयम घटः केनचित् दृष्टः, यह घड़ा इस घड़े को किसी ने देखा है, ग्रामोयम केनचित् गतः, इस गांव में कोई गया हुआ है, इति न सत्यम कर्म दर्शनेन अवगन्तुम, ये ग्राम को देख करके घट को देख करके आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस गांव में कोई गया हुआ है या इस घर को किसी ने देखा है। अर्थात ग्राम के जाने पर भी ग्राम का स्वरूप नहीं बदलता है, घड़ा को कोई देख भी ले तो घड़ा का स्वरूप नहीं बदलता है, इसलिए ये प्राप्य कर्म हो गया, क्योंकि क्रियाकृत विशेष जहाँ पर अनुपलब्ध हो वही प्राप्य कर्म होता है। तो इस तरह से घट में जो आपने दोष दिया था कि ज्ञायते घटः स्वयमेव, ये प्रयोग होने लगेगा। ग्राम में आपने दोष दिया था कि ग्रामो गम्यते स्वयमेव, यह प्रयोग होने लगेगा। यह प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये ग्राम और घट जो है ये प्राप्य कर्म है और प्राप्य कर्म में कर्म मद्भाव नहीं होता। अब निर्वर्त्य और विकार्य का उदाहरण देते हैं। कहा कि घटम करोति इति निर्वर्त्ये, यहाँ घटम करोति में कर्म कौन है? घट। वह निर्वर्त्य कर्म है क्योंकि घट को बनाया जाता है और करोति का अर्थ वही होता है ना, बनाता है, उत्पादयति। घटम करोति माने घटम उत्पादयति, तो यहाँ घड़ा को बनाया जाता है। तो जिस कर्म को बनाया जाए उसको कौन सा कर्म कहेंगे? निर्वर्त्य कर्म कहेंगे। अच्छा, विकार्य कर्म का उदाहरण दिया, सोमम सुनोति। सोम लता एक होती है, सोम नाम की लता, उसको निचोड़ करके रस निकालते हैं, उसी को कहते हैं सोमम सुनोति, माने सोम लता का रस निकाला जाता है। यहाँ जो है पहले सोम लता होती है, लता के रूप में होती है, और जब निचोड़ते हैं तो उससे रस निकल जाता है, तो उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, तो वही हुआ विकार्य। जैसे गन्ना है और गन्ने का रस है, तो गन्ना में अगर सुनोती का उपयोग करेंगे माने इक्षुदंडम सुनोती, तो इक्षुदंड जो होगा वो विकार्य कर्म कहलाएगा क्योंकि सवन क्रिया होने से उसका रूप जो है परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से घटम करोती इस निर्वर्त्य कर्म में माने घट में, सोमम सुनोती में जो सोम विकार्य कर्म है इसमें तज ज्ञातुम सक्यम, क्रिया के द्वारा जो विशेष उत्पन्न होता है। अगर मान लीजिए घड़ा को बनाया जाएगा तो वो दिखेगा ना, घड़ा को देख करके ही हम कह सकते हैं इस घड़े को किसी ने जरूर बनाया होगा। ऐसे ही सोम के रस को देख करके हम कह सकते हैं कि सोम नाम की जो लता है उस लता को ही निचोड़ करके ये रस निकला है। तो सवन क्रिया को देख करके, बनाना क्रिया को देख करके, उत्पादन क्रिया को देख करके हम कर्म के बारे में कह सकते हैं, उसका कर्म का ज्ञान हमें हो सकता है। इसलिए ये निर्वर्त्य कर्म हुआ और ये विकार्य कर्म हुआ, इसमें कर्मबद्भाव होता है जो कि प्राप्य कर्म में ये स्थिति नहीं होती है। वही कहा कि घटम करोति इति निर्वर्त्य, इस निर्वर्त्य कर्म में, सोमम सनोति इति विकार्य, इस विकार्य कर्म में, तज ज्ञातुम सक्यम माने क्रियाकृत विशेष जो है वो ज्ञातुम शक्य है, उसको जाना जा सकता है, न तत् प्राप्यम, और ये दोनों जो है घट और सोम ये प्राप्य कर्म नहीं है। तथा च घटादेह दृश्यादो प्राप्त कर्मत्वात् न उक्त अति प्रसंग, इसीलिए घटादि में और दृश्यादि में जो है प्राप्त कर्मत्व का अभाव होता है, इसलिए अति प्रसंग नहीं होगा। माने वह दोष जो आपने दिया था कि इस तरह का प्रयोग होने लगेगा, गायते घटा स्वयमेव, ग्रामो गम्यते स्वयमेव, इस तरह का दोष नहीं होगा। धातुनाम फल अवाचकत्व, इतना ही नहीं है, एक और दोष बता रहे हैं कि धातु का अगर फल का, धातु का अर्थ अगर फल नहीं मानेंगे, धातु को अगर फल का वाचक नहीं मानेंगे, तो फिर त्यज गम्योह पर्यायता प्रति, फिर त्यज धातु और गम धातु जो है पर्यायवाची होने लगेंगे। क्योंकि त्यज धातु और गम धातु में व्यापार तो समान ही होता है, केवल फल का अंतर होता है, इसलिए त्यजति और गच्छति दोनों के अर्थ में अंतर है। क्योंकि त्यज धातु में भी क्या होता है, गमन क्रिया होती है, वृक्षम त्यजति खगः, खग जो है वृक्ष को छोड़ करके जाता है, तो यहाँ भी जाना तो है, व्यापार तो ही रहा है, और ग्रामाद गच्छति, यहाँ भी गम धातु का व्यापार अर्थ है। अंतर क्या है? केवल फल का अंतर है, क्योंकि चलना क्रिया दोनों में है, केवल फल का अंतर है कि एक में क्या होता है, त्यज धातु में फल है विभाग और गम धातु में फल है संयोग। त्यज धातु का अर्थ होता है विभागानुकूल व्यापार और गम धातु का अर्थ होता है संयोगानुकूल व्यापार। तो किसका अंतर हुआ, किस अर्थ का अंतर हुआ दोनों में? संयोग और विभाग रूप फल जो है उसी का अंतर हुआ ना। और अगर आप धातु का फल अर्थ मानेंगे ही नहीं तो फिर क्या होगा, त्यज धातु और गम धातु दोनों समानार्थक होने लगेगी। क्यों? तो क्रियावाचकत्व तो अविशेषात्, क्योंकि चलना क्रिया जो है वह तो अविशेष है, माने किसी में विशेष नहीं है, एक ही टाइप की चलना क्रिया हो रही है त्यज धातु में भी और गम धातु में भी। फलस्य उपलक्षणत्वे भी एक क्रियाया एवं पूर्व देश विभागोत्तर देश संयोग जनकत्वात् उक्त दोष तादवस्थम इति इत्यपि वदन्ति। कहा कि ऐसा है, यहाँ जो हम कहते हैं ना कि फल का अवाचक धातु है, इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं पर भी जो है फल नहीं होता है, कहीं कहीं फल भी धातु का अर्थ होता है। कहा कि नहीं, ऐसा भी नहीं है। फलस्य उपलक्षणत्वेपि, फल को अगर हम उपलक्षण भी मान लें तो भी क्रियाया फिर व्यापार ही जो है, अर्थात व्यापार ही जो है ना फल अर्थ को भी बता देगा। त्यज धातु का जो व्यापार है ना, वह व्यापार फल का भी उपलक्षण है, माने व्यापार व्यापार अर्थ को भी बताएगा और फल अर्थ को भी बताएगा। ऐसा अगर न्यायिकों ने कहा कि फल जो है यहाँ पर व्यापार का, व्यापार जो है वह फल का उपलक्षण है, तो कहा कि ये सही नहीं है, क्योंकि तो एक क्रियाया व एक ही जो क्रिया है वही पूर्व देश विभाग और उत्तर देश संयोग दोनों का जनक होता है, दोनों को उत्पन्न करता है, तो फिर कोई अंतर अभी भी नहीं रह जाएगा उपलक्षण मानने पर भी, क्योंकि व्यापार दोनों में समान है। तो उक्त दोष तादवस्थ्यम, तो जो दोष हमने कहा है कि त्यज और गम धातु में पर्यायता पत्ति होगी, वह दोष तो फिर भी रह ही जाएगा फल के उपलक्षण मानने के बावजूद भी। तस्मात आवश्यकम सकर्मकानाम फलवाचकत्वम, इसलिए जो सकर्मक धातु है उसका फलवाचकत्व अवश्य रूप से मानना चाहिए। अकर्मकानाम तो तन निर्विवादम एवं, कहा कि जब और जो बच गई अकर्मक धातु उसमें भी जो है निर्विवाद रूप से ही जो है फल अर्थ तो होता ही होता है। क्यों? तो भू सत्तायाम इत्यादि अनुशासनात्, भू धातु जो है अकर्मक है और पाणिनि ने धातु पाठ में कहा है भू सत्तायाम, और सत्ता जो है वह फल ही है। तो इस तरह से धातु पाठ में अकर्मक धातुओं का फल अर्थ तो क्लियर कट बताया गया है, इसलिए सकर्मक धातु में भी फल अर्थ होता है और अकर्मक धातु में भी फल अर्थ होता है। तो भू सत्तायाम इत्यादि अनुशासनात्, भू सत्तायाम इस तरह से जो पाणिनि का अनुशासन है इससे सिद्ध होता है कि अकर्मक धातु का भी फल अर्थ होता है। अतएव द्व्यर्थ पचि इति भाष्यम संगच्छते, ताकि भाष्य में एक जगह कहा गया है द्व्यर्थ पचि, माने पच धातु जो है उसके दो अर्थ होते हैं, दो अर्थ होते हैं, मतलब फल अर्थ एक होता है और व्यापार दूसरा अर्थ होता है। तो द्व्यर्थ पचि जो भाष्य कहा, भाष्यकार ने कहा है, इससे भी सिद्ध होता है कि धातु के दोनों अर्थ होते हैं, फल अर्थ और व्यापार अर्थ। इस तरह से आपको भी जो है ये दोनों अर्थ स्वीकार करना चाहिए। ऐसा कह करके सातवीं कारिका में जो है बिल्कुल इन्होंने निष्कर्ष रूप में बता दिया कि धातु के ये दोनों अर्थ होते हैं, कोई एक अर्थ मानने से जो है गड़बड़ी होगी। ठीक है, तो आज का पाठ यहीं पर संपन्न करते हैं।